आदर्श बालकों की अमर कहानियाँ।
आज सुनिए भीष्म की कहानी।
वाचक स्वर है संज्ञा टंडन का।
महर्षि वशिष्ठ के शाप से आठों वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। उन्होंने प्रार्थना करके भगवती गंगा को अपनी माता बनने के लिए राजी कर लिया। पुरुवंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गंगा जी ने अपना पति स्वीकार किया, किंतु उन्होंने महाराजा शांतनु से ये वचन ले लिया कि अगर वे उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। महाराज शांतनु ने ये वचन गंगा जी को दे दिया। अब जो भी पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी अपनी धारा में बहाकर ले जाती और कहीं डालाती। राजा शांतनु इसलिए कुछ न कहते कि वचन के अनुसार वे कहीं चली न जाएं। इस प्रकार जब वे सात पुत्रों को जल में डाल चुकी और आठवां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से रहा न गया। वे बोल उठे, तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही दिए, अब ये एक बालक तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा, ये बच्चे तो वसु थे, शाप के कारण ही ये मनुष्य योनि में आए थे। मैंने इन्हें फिर से इनके लोक में भेज दिया। ये आठवां बच्चा भी वसु है, पर इसी के अपराध के कारण शाप हुआ था। ये दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा। आपने मेरे कार्य में बाधा डालकर वचन भंग किया है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। आपका ये पुत्र बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। इतना कहकर गंगा जी उस बालक को लेकर अंतर ध्यान हो गईं। कई बरस बीत गए। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसका कारण जानने के लिए वे आगे बढ़े तो देखा कि एक तेजस्वी बालक दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा की धारा रोक दी है। इसी समय गंगा जी ने प्रकट होकर महाराज शांतनु को बताया कि यही बालक उनका आठवां पुत्र है। तब उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले गए और उसका नाम देवव्रत रखा। महर्षि वशिष्ठ से देवव्रत ने सांगो पांग वेदों की शिक्षा पाई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देव गुरु बृहस्पति ने उसको राजनीति की शिक्षा दी थी और भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। महाराज शांतनु एक दिन यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, तभी सहसा उनके नासपुटों में मदहोश कर देने वाली एक सुगंध समा गई। वो सुगंध योजन गंधा सत्यवती के शरीर की थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के पास तक पहुँचे। उसके रूप पर वे मोहित हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। सत्यवती का पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ था। राजा शांतनु ने जब निषाद राज से उनकी कन्या मांगी तब निषाद राज ने विनय पूर्वक उनसे कहा, राजन, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ जब आप ये प्रतिज्ञा करें कि आपके बाद इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए थे, तथापि अपने विनयी सुशील और योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे निरुत्तर वापस लौट आए। महाराज शांतनु लौट तो आए पर उनका चित्त सत्यवती में ही लगा रहा। इस चिंता से भी दुर्बल पड़ने लगे। पिता को चिंतित देखकर देवव्रत भी चिंतित हुआ। मंत्रियों और सेवकों से पूछकर किसी तरह उसने पिता की चिंता का कारण जान लिया। तब वो बड़े बूढ़े क्षत्रियों को साथ लेकर निषाद राज के यहाँ गया और उसकी कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने कहा, ये कन्या मेरी नहीं है, आप जैसे ही उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है। इसके पिता जब तप करने चले गए तो इसका पालन पोषण करने के लिए इसे मेरे पास छोड़ गए। उनकी भी यही इच्छा थी कि इसका विवाह आपके पिता से हो, किंतु इस संबंध में एक व्यवधान ये है कि इसके पुत्रों की आपसे प्रतिद्वंदिता हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते। निषाद राज, देवव्रत ने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। पर इतने से ही निषाद राज को संतोष न हुआ। उसने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ क्षणों तक विचार किया, उसके बाद हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया है, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इतनी भीषण और कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण देवताओं ने देवव्रत का नाम भीष्म रखा। तब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी और शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी, जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा तभी मृत्यु उसे छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का भीष्म ने जीवन भर पालन किया और महाभारत के युद्ध में जब वे शरशैया पर गिर पड़े, शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित बने रहे।
ये थी अरपरिजू.com की प्रस्तुति।